نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم. کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, ہم سب کی غفلت اور جہالت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. بزرگان محترم, اس وقت ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم ہمارے ملک کی آزادی کے دن کو منانے کے لیے اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں. اس وقت میرا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ ملک غلام کیسے بنا اور فریڈم فائٹ آزادی کی لڑائی کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کا تھوڑا سا اتہاس میں آپ کے سامنے عرض کروں. تقریباً 150 سال کی خون اور جگر کی قربانی کا اتہاس میں اس وقت اپنے ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بیان میں آپ کے سامنے ہرگز نہیں بیان کر سکتا. یہ ایک بہت بڑی داستان ہے, بہت بڑی درد بھری داستانیں ہیں اور بے شمار جنگ آزادی کے ان اکابرین کی قربانیاں ہیں. کوشش کروں گا کہ کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے پہلے 1498 عیسوی میں, 1498 کے اندر پورٹوگل سے واسکو ڈی گاما کی سرپرستی کے اندر ایک ویپاریوں کا, ملاحوں کا ایک جہاز ہندوستان آیا اور یہ یوروپ سے ایشیا میں آنے والا سب سے پہلا یہ پانی کا جہاز تھا. ہندوستان کے اندر اس وقت جو کیرالا کی راجدھانی ہے کالیکٹ, اس کے قریب کے دریا کے کنارے کے اوپر واسکو ڈی گاما نے اور اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے پڑاؤ ڈالا. یہ آئے تھے ویپار کی نیت سے, تجارت کی نیت سے, کاروبار کی نیت سے, لیکن انہوں نے ہندوستان کے اندر آ کر کے صرف ویپار نہیں کیا بلکہ پورٹوگل سے عیسائیت کو, کرسچینالٹی کو ساتھ میں لے کر کے آئے تھے. اور انہوں نے ویپار کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر عیسائی دھرم کو پھیلانا شروع کیا اور بہت سی جگہوں کے اوپر چرچ بنائے. چرچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرینیٹی کورٹ, عیسائی کورٹیں انہوں نے چالو کی اور دھیرے دھیرے انہوں نے عیسائی مذہب کو یہاں پر پھیلانا شروع کیا. ایک طرف بزنس بھی کرتے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے اور اپنا عیسائی دھرم بھی یہاں پھیلاتے تھے. جو ان کے راستے میں آتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتے تھے, ختم کر دیتے تھے. نہ جانے کتنے ہمارے ہندوستانی بھائی پورٹوگل سے آئے ہوئے واسکو ڈی گاما کی ٹیم کے لوگوں کے ہاتھ سے مارے گئے. ان کی ایک بہت بڑی داستان ہے. افسوس ہے کہ ہمارا اتہاس اس سے خاموش اور چپ ہے. واسکو ڈی گاما اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. یہ خبر جب یوروپ کے دوسرے انگریزوں کو پہنچی کہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے, یہ تو کمانے کی جگہ ہے, تو تقریباً 1601 عیسوی میں, 1601 کے اندر, 1601 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی. ابھی بھی آج ہم کو معلوم نہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں قائم ہوئی تھی, اس کا بھی تھوڑا سا اتہاس سن لیجیے. انگلینڈ کے 101 ویپاریوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے और 30,000 pounds जमा करके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 101 व्यापारियों ने कायम की, तो उसका मकसद ये था कि एशियन मुल्कों के साथ, खुसूसन हमारे हिंदुस्तान के साथ व्यापार और तिजारत के ताल्लुकात को बढ़ाना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1601 में कायम हुई और उनका जहाज हिंदुस्तान आया और यहां आकर के उन्होंने धीरे धीरे तिजारत और बिजनेस शुरू किया। यहां से सोना चांदी और हमारे हिंदुस्तान की ढाका की मलमल, इसको चोरी कर करके यहां से इन्होंने ले जाना शुरू किया। उस जमाने के अंदर ढाका में, ढाका उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, उस वक्त ढाका में ऐसी मलमल मचती थी कि 100 meters मलमल का कपड़ा अगर कोई आदमी उसकी घड़ी करे, उसको लपेट ले, तो एक वीटी के अंदर भी उसको छुपा सकते थे, इतनी बारीक मलमल होती थी। और रोम और पेरिस और लंदन के अंदर उसको उस जमाने की औरतें, क्रिश्चियन औरतें उसको पहना करती थी। इन्होंने यहां आकर की तिजारत शुरू की और तिजारत के साथ साथ धीरे धीरे वो अपना लश्कर भी लाने लगे, अपने कदम यहां जमाने शुरू किए। उस जमाने में उन्होंने जो कोठियां बनाई थी अपने लश्करों को छुपाने के लिए, उसमें से कुछ कोठियों की यादगार अगर देखनी हो तो सूरत जब हम जाते हैं तो सूरत तापी नदी के किनारे के ऊपर आज तक उन कोठियों की कुछ यादगार मौजूद है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने कदम यहां जमाए और फिर इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के देसी नवाब लोग, राजा महाराजा लोग आपस के अंदर लड़ने झगड़ने के अंदर लगे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि घर के अंदर जो है, कोई एक आदमी गद्दार निकले तो वही पूरे घर को बर्बाद करने का जरिया बन जाता है। तो घर के हमारे देसी नवाब, महाराजा, राजा लोग आपस की लड़ाई में थे, उसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और राजा महाराजाओं को आपस में लड़ा लड़ा करके उसने कमजोर किया। आज ये पॉलिसी, काश के हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त के तमाम नागरिक लोग समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां आकर के यहां के देशवासियों को आपस में लड़ा करके कमजोर करके अपना कब्जा यहां जमाया था, आज वही पॉलिसी अंग्रेज लोग इस देश के अंदर अपना रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। फिर इन्होंने देखा कि अब यहां अपने कदम धीरे धीरे जमा रहे हैं, लश्कर को ला रहे हैं। सबसे पहले 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी के मैदान के अंदर इन्होंने एक हिंदुस्तान के उस जमाने के बंगाल के बादशाह नवाब सिराजुद्दौला के साथ इन्होंने बाकायदा प्लासी के मैदान के अंदर जंग की और मीर सादिक जैसे कुछ गद्दार उनको मिल गए और उनकी गद्दारी की वजह से 1757 की ये जो जंग थी वो प्लासी के मैदान के अंदर नवाब सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफर सादिक और मीर कासिम ऐसे गद्दार निकले कि अल्लाह की तरफ से उनको कुदरती ऐसी सजा हुई कि इस जमाने के अंदर जो कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, इससे भी ज्यादा उनको खतरनाक बीमारी लगी। ऐसी ऐसी बीमारी उनको लगी कि बाद के अंदर ब्लैक कोबरा जैसे एकदम जहरीले नाग उनको डसाए जाते थे, फिर भी उनकी बीमारी कम नहीं होती थी। ऐसी खतरनाक ब्लैक कोबरा का जो जहर होता है, इससे भी ज्यादा खतरनाक जहर उनके बदन के अंदर फैल चुका था। ये अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में सजा दी थी गद्दारी करने की, और आखिरत की सजा अपनी जगह के ऊपर है। 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी के मैदान के अंदर जब हार गए तो अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर सबसे पहले जो है अपनी हुकूमत जमाई। फिर उस हुकूमत को उन्होंने आगे बढ़ाया, यहां तक के बाजू में जो मैसूर की हुकूमत थी, जहां सुल्तान टीपू शहीद वहां हुकूमत करते थे, सुल्तान टीपू शहीद के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू की 1799 ईस्वी के अंदर। 1799 के अंदर सुरंगापट्टनम का मैदान आज भी मैसूर के बाजू के अंदर मौजूद है। उस सुरंगापट्टनम के मैदान के अंदर अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू के साथ जो है जंग शुरू की। जब उस जंग के अंदर सुल्तान टीपू ने मुकाबला किया, ऐसा जबरदस्त मुकाबला किया, उस जमाने के अंदर दुनिया मिसाइल क्या चीज है वो जानती नहीं थी। मेरे पास इतिहास के पूरे सबूत है कि सुल्तान टीपू शहीद ने सबसे पहले सुरंगापट्टनम की लड़ाई के अंदर मिसाइल को इस्तेमाल किया था। उस वक्त अमेरिका और यूरोप दुनिया का कोई देश मिसाइल क्या चीज होती है वो भी जानते नहीं थे। उस वक्त सबसे पहले मिसाइल की थियरी इस्तेमाल करने वाले सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अंग्रेजों के सामने 1799 वाली लड़ाई के अंदर जोरदार मुकाबला किया। उस मौके के ऊपर भी कुछ गद्दार लोग सामने आए और उन गद्दारों की वजह से सुल्तान टीपू शहीद को सुरंगापट्टनम के मैदान के अंदर हारना पड़ा, शिकस्त खानी पड़ी। जब हार गए 3 दिन तक उनकी लाश जमीन के ऊपर पड़ी रही, किसी अंग्रेज जनरल मेजर की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुल्तान टीपू की लाश के करीब भी जाए। उनको ये खतरा था कि शायद सुल्तान टीपू अभी जिंदा है और हम करीब जाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या हश्र होगा। 3 दिन इस हाल में गुजर गए और अंग्रेजों को यकीन हो गया कि अब सुल्तान टीपू यकीनन शहीद हो चुके हैं। तो जनरल हॉर्स जो अंग्रेजों का चीफ इन कमांडर था उस लड़ाई के अंदर, वो यूनियन जेट को लेकर के सुल्तान टीपू के लाश के करीब पहुंचा और उसने सुल्तान टीपू की सीने के ऊपर बैठ करके यूनियन जेट को जो है उसने लहराया। और उस दिन उसने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्तान टीपू कौन आदमी थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए उसी दिन जनरल हॉर्स ने ऐलान कर दिया था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये मैं आपको 1799 की बात कर रहा हूँ, 1799 की आपके सामने बात कर रहा हूँ। सुल्तान टीपू शहीद, मैं आपको बताऊं, आपने सुल्तान टीपू शहीद की सीरियल शायद देखी होगी, उसके अंदर उनको बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है, उनको बगैर दाढ़ी का चेहरा बताया गया है, ये गलत है। सुल्तान टीपू शहीद अल्लाह के वली थे और कुतुब थे। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल के दर्जे के वली थे, वो खुद लिखते हैं मकतूबात के अंदर कि सुल्तान टीपू शहीद अपने जमाने के कुतुबों के भी वली थे, सबसे बड़े वली और अवलिया अल्लाह में से थे सुल्तान टीपू शहीद। बल्कि इतना ही नहीं, सुल्तान टीपू शहीद वो इंसान थे, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि बालिग होने के बाद कभी उनकी नमाज कजा नहीं हुई थी, वो सुल्तान टीपू शहीद थे। वो साहिबे तरतीब आदमी थे, जिंदगी में एक नमाज भी उनकी कजा नहीं हुई थी, तहज्जुद गुजार आदमी थे। 1799 के अंदर सुल्तान टीपू की शहादत हुई। उनका वो जुमला, उनका वो सेंटेंस जो इतिहास के अंदर आज तक मौजूद है कि गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी के मुकाबले के अंदर शेर की तरह एक घड़ी की जिंदगी ज्यादा अच्छी है, ये कहते हुए वो सुरंगापट्टनम के मैदान में शहीद हुए। सुल्तान टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों को हिम्मत बढ़ी और वो धीरे 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 आगे बढ़े और सबसे पहले 1800 ईस्वी के अंदर, 1800 ईस्वी के अंदर लॉर्ड लिक के कमांडरी के अंदर अंग्रेजों की फौज बंगाल और मैसूर से आगे बढ़ी दिल्ली की तरफ कि चलो अब दिल्ली को हम लोग कब्जा करते हैं, और धीरे धीरे वो लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। उस वक्त दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत अपनी कमजोरी की हालत के अंदर थी और मुगल बादशाह धीरे धीरे कमजोर होते हुए चले आ रहे थे। 1803 ईस्वी के अंदर, 1803 के अंदर, 1803 ईस्वी के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों का लश्कर दिल्ली पहुंचा, और लश्कर दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम उस वक्त मौजूद थे। ये बहादुर शाह जफर से भी पहले शाह आलम उस वक्त मौजूद थे। शाह आलम को उन्होंने जबरदस्ती एक आपस के अंदर सुलहनामा लिखवाया। उस सुलहनामे के 3 जुमले इतिहास में आपने पढ़े होंगे कि खल्क खुदा की यानी पब्लिक अल्लाह की, मुल्क बादशाह का, और ऑर्डर एंड लॉ वो कंपनी बहादुर का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये उस वक्त उन्होंने नारा लगाया था। जिस दिन वो नारा उन्होंने लगवाया शाह आलम के पास, उस दिन यकीन हो गया था कि अब जो है लाल किले के अंदर मुगलों की हुकूमत खाली नाम की है और अब हकीकत के अंदर हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की हो चुकी है। ये 1803 का, 1803 की बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जब शाह आलम के पास जो है उन्होंने सुलहनामा लिखवाया था। उस वक्त दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जो हदीस शरीफ बैठ के पढ़ाया करते थे। जिस मस्जिद में बैठ के हदीस पढ़ाते थे आज तक उनकी वो मस्जिद दिल्ली के अंदर मौजूद है। उस मस्जिद में वो बैठने वाले, चटाई पर बैठने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आज के इस मौके के ऊपर मैं दुआ करता हूँ हजरत वाला की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। ये वो शख्स हैं कि जिस शख्स ने सबसे पहले आजादी की लड़ाई के लिए आवाज उठाई, इनसे पहले आजादी के लिए आवाज उठाने वाला कोई शख्स नहीं है। हमारा चैलेंज है कोई भी आदमी इतिहास की रोशनी के अंदर हमारे सामने प्रूफ करे कि 1808 से पहले, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब के ऐलान से पहले किसी ने भी आजादी के लिए आवाज उठाई नहीं थी। 1808 ईस्वी के अंदर, 1808 के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, जो फतावा अजीजिया के पेज नंबर 17 के ऊपर छपा हुआ मौजूद है। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान वालों, तुम कौन सी गफलत की नींद में सोए हुए हो, ये तुम्हारा मुल्क अंग्रेजों का हो चुका है, उसको अंग्रेजों से आजाद कराना हम सब का कौमी फरीजा है, हम सब का जो है अपनी मातृभूमि के साथ प्रेम का तकाजा है, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को आजाद कराने के पीछे लग जाए। ये फतवा 1808 के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। इसीलिए आज की इस मजलिस के अंदर जंगे आजादी के फाउंडर, आजादी की लड़ाई की इब्तिदा करने वाले अगर किसी शख्स को हम तय कर सकते हैं तो वो हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। इनसे पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, ये सबसे पहले इंसान गुजरे हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक रिश्तेदार हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनसे ये कहा कि नवाब होनकर और उनकी फौज के अंदर जाकर के मिलो और मिल करके अंग्रेजों के सामने मुकाबला करो। चुनांचे होलकर जो राजा थे उनकी फौज के अंदर और अमीर खान जो उनके मुंह बोले भाई थे उन दोनों की फौज के अंदर शरीक होने के लिए शाह अब्दुल अजीज साहब ने हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भेजा कि जाओ और नवाब होलकर के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करो। उन्होंने 7 बरस तक मुसलसल होलकर के साथ मिल करके अंग्रेजों के सामने लड़ाई की। 7 बरस की लड़ाई के बाद जब नवाब होलकर ने अंग्रेजों के साथ सुलह की तैयारी की तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मेरी जमीर, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि हम अंग्रेजों के साथ सुलह कर लेवे। इसलिए सैयद अहमद शहीद ने होलकर का लश्कर छोड़ करके दोबारा दिल्ली आ गए और हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब से मुलाकात की। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने फरमाया कि जब होलकर बादशाह सुलह कर रहे हैं तो अब तुम अपनी अलग फौज बनाओ और अलग फौज बना करके अंग्रेजों के सामने लड़ाई की तैयारी करो। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 1818 में 1818 के अंदर 1818 के अंदर बाकायदा उन्होंने फौज तैयार की और पूरे मुल्क का, देश के खोने खोने का उन्होंने सफर किया और पूरे देश के अंदर लोगों को तैयार किया कि हमें अंग्रेजों के सामने लड़ाई करनी है और अंग्रेजों के सामने हमें उठना है और बाकायदा उन्होंने लड़ाइयां शुरू की और उनकी लड़ाई मुसलसल जारी रही 1824 तक। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सबसे पहला फतवा दिया था वो पैसे भी देते रहे, हथियार भी बेचते रहे और साथ साथ में खाना पीना भी भेजते रहे। बराबर 1824 तक हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब इसके जो है सर सेनापति थे। 1824 के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब का इंतकाल हो गया तो फिर हजरत शाह मोहम्मद इसहाक साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमान अपने हाथ के अंदर संभाली। यहाँ तक के 1831 के अंदर 1831 के अंदर 1831 के अंदर हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट जो पंजाब के अंदर एक जगह है उस मैदान के अंदर अपने 200 साथियों के साथ शहीद हुए और उन 200 साथियों के साथ उनकी कब्र बालाकोट के मैदान के अंदर आज तक मौजूद है और वहां उन्होंने शहादत का जाम किया और 200 साथियों के साथ उनकी कब्र बालाकोट के मैदान के अंदर बनी। ये बाकायदा 200 वो साथी थे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के खातिर सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी दी। ये हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने 1831 के अंदर, 1831 के अंदर बालाकोट के मैदान के अंदर इस मुल्क की आजादी के खातिर इन्होंने कुर्बानी दी है। उसके बाद 1831 के बाद उलमाए सादिकपुर जो पटना बिहार के अंदर, जो वहां की राजधानी है पटना, उसके करीब में सादिकपुर है, वहां के उलमा ने बाकायदा एक लश्कर बनाया और उन्होंने 1831 से 1846 1846 तक तकरीबन 80,000 आदमियों की फौज के साथ अंग्रेजों के साथ बराबर मुकाबला चालू रखा। ये 1831 से लेकर 1846 तक की दास्तान है कि जिसमें उलमाए सादिकपुर और मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह उनके साथियों ने 80,000 के लश्कर के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया है। उसके बाद हुआ ऐसा कि अंग्रेजों की फौज धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर बराबर अपना कब्जा जमा रही थी और पूरे मुल्क के अंदर भी उनका कब्जा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। इसी दरमियान अंग्रेजों की तरफ से एक कमबख्ती सामने आई। वो कमबख्ती ये सामने आई कि इन्होंने 4 खतरनाक काम किए। अंग्रेजों ने पहला काम ये किया कि उनकी फौज के अंदर जो मिलिट्री के वास्ते रोटी पकती थी, उस रोटी का जो आटा होता है, उस लोट के अंदर उन्होंने सुअर और गाय की हड्डी का पाउडर, सुअर की हड्डी का पाउडर और गाय की हड्डी का पाउडर, फौजियों के लिए जो रोटी पकती थी उसके अंदर आटे में उन्होंने मिलावट चालू की। दूसरा काम अंग्रेजों ने यह किया कि जो घी आता था उस घी के अंदर उन्होंने सुअर की हराम चर्बी को उसके अंदर मिलाना चालू किया। और तीसरा काम यह किया कि कुओं के अंदर गाय और सुअर का गोश्त डाला और कुओं का पानी नापाक करके फौजियों को और मिलिट्री को कहा कि तुमको इसी कुएं के अंदर से पानी पीना है। और चौथा काम यह किया कि जो कारतूस उन्होंने बनवाई उसके ऊपर उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी लगाई और कंपलसरी ये करार दिया कि कोई भी सोल्जर, कोई भी सिपाही अपनी कारतूस को खोले तो अपने मुंह से खोले ताकि हिंदुओं की लागनी इस तरीके से दुभाएगी कि वो गाय की चर्बी वाली कारतूस को खोले और मुसलमान फौजियों की लागनी इस तरीके से दुभाएगी कि वो सुअर की चर्बी वाली कारतूसों को खोले। ये 4 किस्म के काम उस वक्त अंग्रेजों ने किए जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर गजब और गुस्से की लहर फैल गई और बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। और उसी के नतीजे के अंदर 1857 के अंदर, 1857 के अंदर जंगे गदर हुई जिसको हम विप्लव कहते हैं, अंग्रेज उसको गदर कहते हैं, बगावत कहते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे हिंदुस्तान वासियों की तरफ से बहुत बड़ी सशस्त्र जंग थी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ उठाई गई थी। 1857 के अप्रैल के महीने के अंदर मंगल पांडे को फांसी दी गई, जिनके नाम के ऊपर अब फिल्म भी बन चुकी है उनकी हिस्ट्री के ऊपर। अगर जो उसके अंदर जो मैंने स्टोरी पढ़ी है पेपर के अंदर, उससे ये मालूम होता है कि सही इतिहास उसके अंदर रजू नहीं किया गया है, उसके अंदर भी इतिहास को रजू करने के अंदर बहुत गड़बड़ी की गई है। 10 मई 1857 के अंदर जो है ये विप्लव शुरू हुआ और अफसोस के विप्लव करने वाले हमारे सिपाहियों के पास कोई अच्छा सेनापति नहीं था जो उनको अच्छी तरीके से संभाल सके। इसलिए उस जमाने के अंदर तकरीबन 20 सितंबर 1857 के अंदर ये विप्लव हमारा नाकाम हुआ और लाल किले के ऊपर से हमारा तिरंगा झंडा उतार करके बाकायदा वहां यूनियन जैक यानी इंग्लैंड का झंडा लहरा दिया गया। ये तारीख थी 20 सितंबर 1857 की कि जिस दिन तिरंगा झंडा उतार करके वहां बाकायदा तौर पर यूनियन जैक को लहरा दिया गया, बहादुर शाह को, जफर को पकड़ा गया और पकड़ करके उनको कैद किया गया और उनके जो शहजादे मिले उन शहजादों को यानी प्रिंस को, बादशाह के बेटों को पकड़ के कत्ल किया गया और कत्ल करके सिर्फ उनके सर जो खून के अंदर भरे हुए थे एक खुंचे के अंदर रखे गए और रख करके उसके ऊपर बेहतरीन कपड़ा ओढ़ाया गया। और सुबह सुबह नाश्ते के अंदर जब नाश्ते का खुंचा बहादुर शाह जफर के पास अंग्रेज सिपाही लेकर के पहुंचे तो नाश्ते का खुंचा बाद में गया, पहले वो खुंचा गया जिसके अंदर बहादुर शाह जफर के बेटों की खोपड़ियां रखी हुई थी, खून से भरी हुई, और उसके ऊपर शानदार कपड़ा ओढ़ाया हुआ था। बहादुर शाह जफर ये समझे कि अंदर नाश्ता रखा होगा, जब कपड़ा उठाया तो देखा कि अपने 3 नौजवान लड़कों के सर रखे हुए हैं, खून से भरे हुए। तो बहादुर शाह जफर की आंख में आंसू नहीं आए, बल्कि उन्होंने यूं कहा कि ये तैमूरी शहजादों की शान है, ये मुगल बेटों की शान है कि वो अपने बड़ों के साथ लाल खोपड़ी के साथ आते हैं, गुलाम बनकर के वो नहीं आते। वो मुल्क के लिए जान दे सकते हैं लेकिन जो है अंग्रेजों के गुलाम नहीं बन सकते। बहुत अच्छा हुआ ये शहीद हो गए लेकिन गुलाम नहीं बने। खुशी के मारे बहादुर शाह जफर ने जो है नारा लगाया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके फिर रंगून की जेल में ले गए और उसी जमाने का उनका वो शेर मशहूर है, कितना बदनसीब है तू ए जफर, कितना बदनसीब है तू ए जफर, 2 गज जमीन मिल सकी कोए यार में। बहादुर शाह जफर को वहाँ रंगून की जेल में ले गए और जिंदगी के आखिरी दिन बहादुर शाह जफर ने जो है वहीं पर गुजारे, वहीं पर इंतकाल हुआ। और बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल के अंदर दफन किया गया और आज तक रंगून की जेल के अंदर उनकी खबर मौजूद है। जिस वक्त 1830 के बाद 1930 के बाद एक मर्तबा हमारे हिंदुस्तान के आजादी के बाद लीडरों को, जिसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनको भी रंगून की जेल में अंग्रेजों ने बंद किया था। जवाहरलाल जी ने रंगून की जेल के अंदर देखा कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह उनकी खबर तो यहाँ है रंगून में। तो पंडित जी ने उसी वक्त के ऊपर दिल में नीयत की थी और बहादुर शाह जफर की कब्र पर खड़े होकर कहा था, ए बादशाह सलामत, जिस दिन देश आजाद होगा तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि तुम्हारी कब्र को रंगून की जेल से निकाल करके मैं दिल्ली के लाल किले के अंदर लाकर के तुमको मैं दफन करूंगा। ये उन्होंने वहाँ प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने वहाँ अहद किया था। जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, पंडित जी देश के सबसे पहले वड़ा प्रधान बन गए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैंने जेल में बैठे बैठे ये प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लाश को मैं रंगून की जेल से निकाल करके लाल किले में लाकर के दफन करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट ने एक आवाज पर पंडित जी की आवाज में लब्बैक कही। फिर जब ये मसला आया, मौलाना आजाद उस वक्त जो है शिक्षण मंत्री थे कैबिनेट के, और मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप पार्लियामेंट से ये कानून तो पास करवा रहे हैं कि बहादुर शाह जफर की लाश को लाना है, लेकिन आप जरा मजहबी एतबार से फतवा भी मालूम कर लीजिए कि इस्लाम के अंदर ये जायज है कि नहीं है। चुनांचे पंडित जी ने खुद उस जमाने के अंदर दारुलूम देवबंद को और मदरसा मजाइलूम सहारनपुर किताबों के अंदर मौजूद है, फतवे में यूं लिखा गया कि जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है उसी जगह के ऊपर उनकी कब्र को रहने दिया जावे, इस तरह कब्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सही और जायज नहीं है। पंडित जी ने उस फतवे का एहतराम किया और उस फैसले को उन्होंने वापिस लिया कि वहीं रंगून के अंदर जो है बहादुर शाह जफर की जो है लाश रहेगी और वहीं पर उनको रखा जाएगा। 1857 के अंदर जब विप्लव नाकाम हुआ है तो अंग्रेजों ने वो जुल्म किए हैं, वो जुल्म किए हैं कि मैं उसको आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे जुल्म अंग्रेजों ने किए हैं, चुनांचे पूरे दिल्ली के अंदर मेरठ से लेकर दिल्ली तक तमाम रास्तों के ऊपर जितने झाड़ थे हर झाड़ के ऊपर फांसी के माचड़े लटकाए और उस फांसी के माचड़े के ऊपर और दिल्ली के हर चौराहे के ऊपर, दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर सब जगह फांसी के माचड़े लटकाए गए और 1857 के विप्लव के जितने भी मुजाहिदीन थे हर एक को पकड़ पकड़ के लाते थे, हाथी के ऊपर बिठाते थे और बिठा करके उनके गले में फंदा डालते थे और हाथी को दौड़ा देते थे। बेचारा वो सुरवीर ऊपर लटक करके तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता था और वहीं पर वो कुर्बान हो जाता था। मैं नहीं कहता हूँ, एक अंग्रेज राइटर के हवाले से कहता हूँ, उस राइटर का नाम है एडवर्ड टेम्पसन, उसने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि हम अंग्रेजों ने उस वक्त के ऊपर दिल्ली के अंदर और मेरठ के अंदर जो मजालिम किए हैं उसकी दास्तान मैं नहीं बयान कर सकता। 27,000 27,000 मुसलमान आलिमों को और मुफ्तियों को हमने फांसी के ऊपर लटकाया है, ये एडवर्ड सैमसन खुद अपने हाथ से लिखता है। और आगे चलकर के मैं आपको बतलाऊं, मेवाराम गुप्ता एक राइटर है, उन्होंने 1857 के विप्लव का इतिहास लिखा है। मेवाराम गुप्ता खुद अपने हाथ से लिखते हैं, मैं इतिहास के एक एक सबूत आपको दे रहा हूँ कि 5,00,000 मुसलमानों को दिल्ली के अंदर फांसी की सजा दी गई थी। ये खुद गुप्ता जी ने लिखा है कि 5,00,000 मुसलमानों को 1857 के अंदर दिल्ली के अंदर फांसी दी गई थी। और मैं आपको क्या क्या दास्तानें सुनाऊं, चुनांचे लाशों को लटका करके रखा जाता था, उसको नीचे भी नहीं उतारा जाता था, और बहुत से मुसलमानों को पकड़ के उनको बांध देते थे, बांध करके उनका पेट ताकि वो बेचारा मरे भी नहीं, और तड़प तड़प करके वो अपना वक्त जो है गुजारे, दो दो दिन, चार चार दिन, छह छह दिन उसका वक्त गुजर जाता था। एक इंग्लिश लेडी लिखती है, आप लोग लंदन जाते हैं तो सिर्फ जो है लंदन ब्रिज मत देखिए, वहां पर इंडिया लाइब्रेरी भी मौजूद है। इंडिया लाइब्रेरी के अंदर अंग्रेजों ने जितने जुल्म किए उसके सारे दस्तावेज वहां मौजूद है। उन दस्तावेजों को जाकर के आप पढ़िए इंडिया लाइब्रेरी के अंदर, लंदन सिटी के अंदर। एक अंग्रेज लेडी ने लिखा है, उस लेडी ने ये लिखा है कि मैं दिल्ली के अंदर शाम को अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी घूमने के लिए निकलती थी, जब फिरने के लिए निकलती थी मैं अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर के जाती थी, और रिवॉल्वर इसलिए लेकर के जाती थी ताकि मुसलमान आलिमों के ऊपर मैं रहम करूं, उनके ऊपर मैं मेहरबानी करूं। ये वो लेडी लिखती है। फिर वो लेडी यूं लिखती है कि भविष्य के अंदर मेरा इतिहास पढ़ने वालों को सवाल पैदा होगा कि रिवॉल्वर से रहम कैसे होता है, रिवॉल्वर से मेहरबानी कैसे होती है। इसलिए मैं खुद उसका जवाब लिख देती हूँ कि मैं इसलिए रिवॉल्वर लेकर के जाती थी कि दिल्ली के लाल किले के सामने और इंडिया गेट के सामने बेशुमार मुसलमान आलिमों को पकड़ करके बांधा हुआ होता, उनके पेट के अंदर पीतल डाला हुआ होता, उनके ऊपर जख्म डाले होते, वो बेचारे तड़पते हुए होते थे और दो दो चार चार दिन से तड़पते होते थे। मैं रिवॉल्वर इसलिए लेकर के जाती थी ताकि गोली मार करके बेचारे को खत्म कर दूं, ताकि वो तड़पने की तकलीफ से उसको छुटकारा मिल जाए। इस तरीके से जो है हम अंग्रेजों ने जुल्म किया है, ये अंग्रेज लेडी ने लिखा है और इंडिया लाइब्रेरी के लंदन के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत से उलमाए किराम को पकड़ करके बांधा जाता था और उनको तोप के साथ बांधा जाता था और तोप के गोले के साथ उनको उड़ाया जाता था, बिचारों की एक एक बोटियां उड़ करके जो है खत्म हो जाती थी। ऐसे 5,00,000 आदमियों को 1857 के विप्लव के नतीजे के अंदर 5,00,000 मुसलमानों को शहीद किया गया, कुर्बानी दी गई। पूरे मुल्क के अंदर सन्नाटा छा गया और पूरा मुल्क खामोश हो गया। 10 बरस तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंग्रेजों के सामने आंख उठा करके देखे। आज जिस दारुलूम देवबंद को बदनाम किया जाता है, देवबंद के जिस मदरसे को बदनाम किया जाता है, काश के मैं इस पोजीशन में होता कि उसकी हिस्ट्री में आपको सामने जिक्र करता। 1857 के इस विप्लव की नाकामी के बाद जब पूरे देश के लोग मायूस हो चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के सामने नजर उठा करके भी देखे। 10 बरस गुजरने के बाद 1867 के अंदर देवबंद की सरजमीन के ऊपर हमारे सारे बुजुर्गान दीन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोथी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने मिलजुल करके देवबंद के मदरसे की बुनियाद डाली। और देवबंद के मदरसे की बुनियाद इसलिए डाली थी, आज भी देवबंद के बंधारण के अंदर, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इस मदरसे की स्थापना इसलिए हो रही है ताकि इस मुल्क को अंग्रेजों के हाथ से छुड़ाया जाए, अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराया जाए, और अंग्रेजों के जुल्म से इस मुल्क को आजाद कराना है, इसके लिए हमने इस मदरसे की बुनियाद और पाया रखा है। तो दारुल उलूम देवबंद, उसका फाउंडेशन, उसकी स्थापना अंग्रेजों के जुल्म से इस मुल्क को आजाद कराने के वास्ते रखी गई थी। बुजुर्गाने मोहतरम, मैं कौन कौन सी दास्तानों को आपके सामने जिक्र करूं, बहुत जो है मुझे वक्त दिया गया था उससे बहुत आगे मैंने अपनी बात को बढ़ा दिया है। मैं आपको और क्या जिक्र करूं, 1867 में देवबंद का मदरसा कायम हुआ, उसके बाद दारुलूम देवबंद के फर्स्ट स्टूडेंट जिनका नाम मौलाना महमूद हसन था, बाद में चलकर के उनको लकब शेखुल हिंद का मिला। उन्होंने माल्टा की काली कोठड़ी के अंदर जेल की सजा भुगती, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक चरवड़ चलाई थी, उस चरवड़ के नतीजे के अंदर उनको जेल की सजा हुई और 1920 के अंदर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, माल्टा ये यूरोप में एक टापू है और इंग्लैंड के करीब के अंदर है, वहां 3 बरस 1 महीना हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथियों के साथ जेल के अंदर बंद रखा गया था। बहुत गोरे आदमी थे, इंतकाल जब हुआ तो इंतकाल के वक्त गुसल के लिए जब उनके कपड़े उतारे तो गुसल देने वाले रो पड़े कि हजरत इतने गोरे और पीठ पूरी काली और लाल थी, बहुत काली और लाल थी, क्या हजरत की पीठ काली और लाल क्यों है, पूछो किसी को। तो उनके जेल के साथी मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और पूछा कि हजरत की पीठ काली और लाल क्यों है, तो हजरत मदनी की आंख में आंसू आ गए और कहने लगे, एक राज था, एक भेद था, एक सीक्रेट था, आज मुझे खोलना पड़ रहा है, और वो ये है कि माल्टा के 3 साल की जेल के अंदर अंग्रेज रोजाना सुबह के अंदर 3 बजे हजरत शेखुल हिंद को जेल में से निकालते थे, बर्फ के ऊपर सुलाते थे और बर्फ पर उल्टा सुला करके हजरत की पीठ के ऊपर सलियों को लाल करके और लोखंड को गर्म करके हजरत की पीठ को इतना मारते थे कि जिसकी वजह से हजरत की पीठ लाल और काली पड़ गई थी, और इसी हाल के अंदर उनका पूरा बदन नहीफ और कमजोर हो गया था। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, लोगों ने पूछा कि हजरत आप देवबंद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट स्टूडेंट हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट स्टूडेंट हैं, आप कोई जगह बतलाओ जहां आपकी आलिशान हम कब्र बनावे। हजरत ने फरमाया कि तुम मेरी आलिशान कब्र बनाने की बात करते हो और मेरी कब्र पर गुंबद बनाने की बात करते हो, मुझे पूछो मैं क्या चाहता हूँ। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजों के सामने इसी कमजोरी के साथ मैदान में उतरूं और अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते मैं मैदान के अंदर शहीद हो जाऊं, यहाँ तक कि अंग्रेज मेरी लाश के ऊपर अपना गुस्सा निकाले और मेरी लाश को अपनी तलवार के जरिए से चूरे चूरा कर डाले, टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरी लाश को कुत्ते आकर के खा जावे और मुझे दफन करने की जरूरत न पड़े, मुझे कफन पहनाने की जरूरत न पड़े, और कल कयामत के मैदान के अंदर जब सब लोग अपनी कब्र से निकल के आएंगे तो मेरा बदन कुत्तों के बदन से निकल करके आएगा और मैं कहूंगा मैदान कयामत में अल्लाह से कि हिंदुस्तान की आजादी के वास्ते मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की थी। ये हमारे अकाबरीन और बुजुर्गाने दीन के जज्बात थे। मैं सैकड़ों वाकयात इस वक्त छोड़ रहा हूँ और सारी की सारी चीजों को हस्प कर रहा हूँ, इस वक्त मैं फिर से एक बार याद करता हूँ सैयद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना मदनी कौन थे, टुक में उनका तारुफ मैं करवा दूं, आजाद भारत के अंदर जो उस जमाने का सबसे बड़ा हमारे देश का अवार्ड था पद्मश्री, जैसे आज भारत रत्न है, उस वक्त सबसे बड़ा हमारा भारत देश का अवार्ड था पद्मश्री। तो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने ठराव पास किया कि देश का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री अगर किसी इंसान को दिया जाए, सबसे पहला अवार्ड अगर किसी को दिया जाए तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को दिया जाए। सबने एक जबान से ठराव पास किया था। मौलाना मदनी को जब पद्मश्री अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो फरमा दिया, हमने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, कोई अवार्ड लेने के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमें अवार्ड की जरूरत नहीं है, हमने तो देश प्रेम के अंदर लड़ाई लड़ी थी। ये कहकर के हजरत ने उस अवार्ड को भी कबूल नहीं फरमाया और उस अवार्ड को भी हजरत ने रद्द फरमा दिया। ये थे हमारे वो अकाबरीन जिन्होंने अल्लाह के वास्ते और देश प्रेम के खातिर अपनी कुर्बानियां दी। जब हम बारडोली में बैठे हैं तो मैं जरा अपनी 1928 की जो चरवड़ हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाई थी उसका भी कुछ थोड़ा सा जिक्र कर दो। 1928 के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे बारडोली से एक चरवड़ चलाई खेडूतों को साथ लेकर के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस चरवड़ के अंदर अभी कोई जान नहीं थी, लोग उनके साथ मिलते थे, अलग होते थे, मिलते थे, अलग होते थे। इस वक्त मैं बड़ी खुशी से ये बात आपको कह सकता हूँ और बहुत ही इज्जत और बहुत प्रूफ के साथ ये बात कह सकता हूँ, मेरा ताल्लुक उस यूनिवर्सिटी के साथ है, उस मदरसे के साथ है, और जिस मदरसे के इस वक्त के प्रिंसिपल आज की हमारी इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त चरवर चलाई तो वल्लभ भाई पटेल ने एक फतवा पूछा, हमारे बारडोली के खेडूतों ने एक फतवा पूछा दाभेल मदरसे से, क्या हमने जो ये अंग्रेजों के विरुद्ध में चरवड़ चलाई है, तो उस वक्त हमारे दाभेल मदरसे के मुफ्ती मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा एक फतवा लिखा और वल्लभ भाई पटेल की चरवड़ को सपोर्ट किया। जब वो फतवा दाभेल के दारुल इफ्ता से आया तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की चरवड़ के अंदर ताकत आई और लोग उस चरवड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा शामिल हुए। दांडी यात्रा के अंदर भी गांधी जी को सपोर्ट करने वाला हमारा मदरसा था। मैं आज इस इज्जत के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात की जमीन के ऊपर धार्मिक संस्थाओं ने अगर किसी ने आजादी की चरवण को सपोर्ट किया है तो उसके अंदर हमारा नाम अकेला मिलता है, कोई उसके अंदर हमारा शरीक नहीं है। बहरहाल इस मुल्क की आजादी के खातिर हमने बेशुमार कुर्बानियां दी है और अफसोस इस बात का है कि 1949 के अंदर सबसे पहले पार्टीशन और भागले की बात आई। इस वक्त मैं आपको दर्द दिल से कहता हूँ, भागले हमने मांगे नहीं थे, पाकिस्तान हमने मांगा नहीं था, पाकिस्तान के भागले को हमने सपोर्ट नहीं किया था और न पाकिस्तान की मांगनी हमने रखी थी। बहुत साफ साफ कहता हूँ, अफसोस कि मैं आपको एक एक सबूत पेश करता कि आज जिनको हम आजादी के बड़े बड़े लड़वैया लोग कहते हैं, मैं आपको कहूंगा तो आप शर्म के मारे सर झुका लेंगे, वही भागला करवाने के सबसे बड़े हामी थे और उन्हीं लोगों ने भागले करवाए थे। हम मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा नहीं था और न उसके चाहने वाले थे, हमारे बदन के अंदर तो वो खून दौड़ रहा है कि हम तो भागले के विरोधी लोग थे कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए और भारत के टुकड़े ही नहीं होने चाहिए और एक अखंड भारत रहना चाहिए, हम तो ये चाहते थे। पर अल्लाह करे वो दिन आ जाए जब दो जर्मनी एक हो सकते हैं तो तीन हिंदुस्तान के टुकड़े एक हो सकते हैं, हम इम्पॉसिबल नहीं है और अखंड भारत दोबारा बन सकता है। बहरहाल इस मुल्क की आजादी की कुर्बानियों के अंदर हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के इस मुबारक मौके पर हम तमाम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश करते हैं, अल्लाह उन सब की खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 1947 में आजादी के बाद जब गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर सबसे पहली तकरीर की, अगर ऑल इंडिया रेडियो वो प्रूफ आपको देवे तो उसमें वो जुमले मौजूद हैं कि आजादी, लोग मुझे कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहो पाकिस्तान चले जावे, गांधी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों को कैसे कहूं कि पाकिस्तान चले जावे, ये गांधी जी के लफ्ज में आपको बतला रहा हूं कि लोग मुझे दबाव कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को कहो कि पाकिस्तान चले जावे। गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर तकरीर करते हुए पूरे देश को कहा था कि मैं कैसे मुसलमानों को कहूं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, इसलिए कि पूरा देश सोया हुआ था और सबसे पहले मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने सबको जगाया आजादी की लड़ाई के वास्ते, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कुर्बानी दी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी ने कुर्बानी दी, मैं किस जबान से इनको कहूं कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। इस देश की आजादी के लिए इन्होंने 10-10 सालों की, 15-15 सालों की, 20-20 सालों की जेल की सजाएं भुगती है, मैं इनको हरगिज नहीं कह सकता कि तुम देश छोड़ करके चले जाओ। मेरे बुजुर्गों, ये सब हमारी आजादी की तारीख है, जरूरत है कि हम उसको पढ़े। आज हम स्टडी नहीं करते, हम सब कुछ पढ़ते हैं, अपना इतिहास नहीं पढ़ते। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है उसको सफाए हस्ती से मिटाना आसान हो जाता है और जो कौम अपने इतिहास को पढ़ती है दुनिया की कोई ताकत उसको दुनिया से खत्म नहीं कर सकती। जरूरत है कि हमारी नस्ल, हमारी पीढ़ी हमारे इतिहास को जाने। मैं अपने हाईस्कूल परिवार के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा जिससे मुझे कुछ मौका मिला कि आजादी के अंदर जो है मैं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को पेश कर सकूं। चूंकि हमारी पीढ़ी तो यही समझती है कि जो है फुला फुला लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने देश को आजाद करवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने वाले हम लोग हैं। आए कोई मेरे पास इतिहास के सबूत लेकर के कि जब गांधी जी अफ्रीका से आए तो उनको महात्मा का लकब तो मौलाना अब्दुल्हई बारी फिरंगी महल्ली लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। ये महात्मा का शब्द लगाने वाले मौलाना अब्दुल्हई बारी है, हमने उनको महात्मा बनाया है। और गांधी जी को कोई जानता नहीं था, सबसे पहले जमीयत उलमाए हिंद ने अपने फंड के जरिए से गांधी जी को पूरे देश में सफर करवाया और वो लोगों को कहा कि ये भी एक लीडर है और उनकी लीडरी भी तस्लीम करो, हम ही उनको आगे लाने वाले थे। आज जो गांधी कैप कहलाती है, जो दो पल्ली टोपी जो खादी की मिलती है, जो गांधी कैप होती है, आपने कभी देखा कि गांधी जी ने जिंदगी में टोपी पहनी हो? कभी आपने देखा? कोई फोटो है आपके पास एक भी कि जिसके अंदर गांधी जी के सर के ऊपर टोपी हो? फिर ये गांधी कैप कैसे बन गई? इसका इतिहास भी मैं आपको बतला दूं, ये हकीम अजमल खां मरहूम की टोपी है और हकीम अजमल खां के साथ एक मर्तबा एक आजादी के जलसे में हकीम अजमल खां ने एक मिनट के लिए गांधी जी के सर पर वो टोपी रखी, उस दिन से उस टोपी का नाम गांधी टोपी बना, वरना ये हकीकत में हकीम अजमल खां मरहूम की टोपी है। खैर, ऐसी ऐसी तो इतिहास की बहुत सारी दास्तानें हैं, काश के कोई मौका होता मैं आपको सारा तफसील से सुनाता। अल्लाह ताला जो है हम सबको हमारे बुजुर्गों के साथ सही राबता अता फरमाए। मुल्क से हमें मोहब्बत है, देश से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए और देश प्रेम जो है हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, देश प्रेम ईमान का आधा हिस्सा है। जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी देश का गद्दार हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान देश से गद्दारी करते हैं उसका ईमान भी कमजोर है और उसके इस्लाम के अंदर भी गद्दारी है। पक्का मुसलमान कभी देश का गद्दार हो नहीं सकता। देश कैसे तरक्की करे इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत है। 1947 में देश को हमने आजाद तो करा लिया, लेकिन आज 2005 के अंदर देश दोबारा मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलामी के अंदर जा रहा है। बहुत अफसोस से मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए हमें दोबारा देश की आजादी के लिए शायद लड़ाई लड़नी पड़े, ऐसे हालात आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उन तमाम बुजुर्गों की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये मौका इस वक्त कोई तकरीर और जो है बयान का नहीं है, मेरे पीर व मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से मैं अपनी मारूजात की इब्तिदा करता हूँ। मेरे हजरत कभी कभी फरमाया करते थे, कुजा मिस्टर कुजा मुल्ला, कुजा मिस्टर कुजा मुल्ला, कुजा कॉलेज कुजा मकतब, कुजा मिस्टर कुजा मुल्ला, कुजा कॉलेज कुजा मकतब, अलीफ बा ता हो गई पुरानी, अलीफ बा ता हो गई पुरानी, अब आई ए बी सी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह शिकवे के अंदाज में ये शेर इरशाद फरमाया करते थे। उलमा हैं, सब कुछ इसको समझ सकते हैं। कैसी होनी चाहिए, अहमियत क्या है, बयानात हो रहे हैं और कैसी तालीम होनी चाहिए, इंशाल्लाह उसको आपके सामने जिस बुजुर्ग मोहतरम को बाकायदा जहमत देकर बुलाया गया है बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। मैं तालीम का एक जुज़े सानी तरबियत के मुतालिक एक बात अर्ज करता हूँ। हमारे गुजरात के एक मदरसे के अंदर एक जो वाकया हुआ और अजीब वाकया हुआ वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक सीबीआई के बहुत बड़े इंस्पेक्टर एक मदरसे में आए, पिछले दिनों उनका आना जाना बहुत हुआ था कई मदरसों के अंदर, और वो तकरीबन 22 सवालात लेकर आए थे कि आपके मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, क्या कोर्स है, क्या है क्या नहीं है, 22 सवालात थे। हुस्ने इत्तेफाक देखिए कि मदरसे की जो ऑफिस थी वो ऑफिस दरसगाहों के बीच में थी, इधर भी दरसगाह, बीच में ऑफिस। मदरसे की ऑफिस के अंदर मोहतमिम साहब बैठे हुए थे और वो सीबीआई के इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मोहतमिम साहब से अभी पहला सवाल किया था कि इतने में घंटा हुआ, घंटा बदलता है तो हमारे बच्चे एक दरसगाह से निकलकर तजवीद की दरसगाह में जाते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, तो हमारे तलबा को मदरसों के अंदर ये तरबियत दी जाती है कि दरसगाह के बाहर बीच में जो चप्पल होती है वो उस्ताद की होती है और उस्ताद की चप्पल को सीधा करके रखना चाहिए, ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो जब तलबा ऑफिस के सामने से गुजरे तो मोहतमिम साहब की चप्पल तो पहले से सीधी रखी हुई थी, लेकिन सीबीआई के इंस्पेक्टर साहब जो आए थे उनके जूते थे वो उल्टे रखे हुए थे। तलबा ने ये नहीं देखा कि ये किसके जूते हैं और अंदर कौन बैठा है। तलबा ने अपने सिखाए हुए मामूल के मुताबिक इंस्पेक्टर साहब के जूते सीधे करके रख दिए। जब इंस्पेक्टर साहब ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो पहले सवाल के बाद उन्होंने मोहतमिम साहब से ये कहा कि मैं 22 सवाल लेकर आया था, आगे अब मुझे कोई सवाल नहीं करना है, मैं आपके मदरसे की अच्छी रिपोर्ट लिख करके मैं वापिस जा रहा हूँ। इसलिए कि आप मुझे सवाल करते, क्या जवाब देते, लेकिन जो चीज मैंने अपनी आंखों से देख ली कि आपके मदरसे में बच्चों को क्या तरबियत यानी क्या संस्कार दिए जाते हैं, जो मैंने अपने आंखों से देख लिया, वो सवाल जवाब से हल नहीं हो सकता, इसलिए मैं अब खुशी से वापस जा रहा हूँ। और उसने मदरसे की बेहतरीन रिपोर्ट लिखी और लेकर के वापस चला गया। ये वाकया हमारे लिए दरसे इबरत है कि हमें अपने बच्चों को कैसे तरबियत और क्या संस्कार देने की जरूरत है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी मद्दजिल्लाहुल आली की जबान बाबरकत से एक मरतबा मैंने सुना कि इतवार के दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो मेरे पोते घर के ओटे की सीढ़ी है तो सीढ़ी के ऊपर बैठ करके बच्चों की आदत होती है बड़ों की नकल उतारने की। तो कहा मेरा पोता जो है हाथ में दो लकड़ी लेकर के बैठा। अब यकीन है कि दो लकड़ी लेकर बैठा तो अपने उस्ताद की नकल उतार रहा है। तो उसने क्या किया कि एक लकड़ी कभी इधर की दीवार पे मारता, कभी एक लकड़ी इधर की दीवार पे मारता, और कभी अपनी जबान से यूं कहता ए डोबा चल तू पढ़, कभी यूं कहता ए डोबी चल तू पढ़। इस तरीके से वो जुमले बोलता, दोनों दीवार पर लकड़ियां मारता। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब जो है इस मामले में बहुत चौकन्ना है, उन्होंने अपने पोते की इस हरकत को नोट किया। जोहर की नमाज पढ़ने जब मस्जिद में पहुंचे तो पूछा कि ये मेरा पोता है, कौन से मुदर्रिस के पास पढ़ता है। सदर मुदर्रिस साहब से तहकीक की, फिर उस मुदर्रिस साहब को तन्हाई में बुलाया और बुला करके कहा कि मौल साहब आप जो है बच्चों के सामने डोबा डोबी के अल्फाज बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो उस मौली साहब ने इकरार कर लिया। क्या मालूम हुआ कि अगर मुदर्रिस की जबान अच्छी होगी तो बच्चे इंशाल्लाह अच्छी बात सीखेंगे। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मदरसे में है, मौलवियों के बीच में है, एक दारुलूम की कारगुजारी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, अल्लाह हमें माफ करे। हिब्स के एक उस्ताद दरसगाह में बैठ करके अपने तलबा के सामने बैठकर गुटखा खाते थे। चंद दिनों में मैंने देखा उनकी दरसगाह के तमाम तलबा गुटखा खाने के आदि बन गए। ये नहुसत उनके उस्ताद के नामे अमल में जाती है। इसलिए मुदर्रिस का अमल, मुदर्रिस की जबान, दोनों चीजें ऐसी हो कि जिससे तलबा कोई अच्छी बात सीख करके जाए, इसका एहतमाम करने की बहुत जरूरत है। मुतवल्लियान, ट्रस्टियान, कमिटियान हजरात है, उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। 1983 के अंदर हमारे जामिया डाभेल के अंदर पूरे गुजरात का झोड़ हुआ था। हजरत मौलाना उबेदुल्ला साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे निजामुद्दीन से। उस वक्त हमारे गुजरात के एक गांव के अंदर हमारी शान के मुताबिक बहुत आलीशान मस्जिद बनी। इस्तिमा के मशगूल अवकात में से वक्त निकाल करके हजरत मौलाना उबेदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह को उस मस्जिद की इफ्तिताह की दुआ कराने के लिए ले गए। वहां के लोगों ने बहुत शौकिया अंदाज में हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के सामने यूं कहा कि हजरत 70 लाख की मस्जिद हमने बनाई है। हजरत मौलाना उबेदुल्ला साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बात सुनते रहे, फिर धीरे से जुमले में एक जवाब दिया कि 70 लाख की मस्जिद बनाई है तो मुदर्रिस को और इमाम को कम से कम 7,000 रुपये तो पगार देंगे ही देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इससे सुनकर के ट्रस्टियों की हवा निकल गई। क्या मालूम हुआ कि मुदर्रिसीन और उलमाए किराम को कम से कम इतनी तनख्वाह और पगार दो कि जिससे उनकी जरूरियात पूरी हो जाए। एक जगह के ऊपर इमाम की जरूरत थी, उन्होंने हमारे सूरत से जो वीकली पेपर निकलता है उम्मीद, उसमें जाहिरात दी कि इमाम की जरूरत छे, और नीचे यकीन मानिए 16 खूबी मतलूबा लिखी हुई थी कि इमाम हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, अनुभवी हो, बड़ी उम्र के हो, तकरीर करी सके, जुआनियाओं ने लेने चाले, गाम में माहौल बनावे, 16 सिफात लिखे हुए थे। अब इत्तेफाकन करने जा रहा हुआ था, वहाँ असर की नमाज मैंने पढ़ी तो वहाँ के ट्रस्टी हजरात मिले कि मुफ्ती साहब कोई इमाम हुई तो जो जो आंख माँ के मोकल जैन के। तो मैंने धीरे से अपनी आदत के मुताबिक पूछा कि पगार कितना देंगे, तो मुझे कहने लगे कि मौल साहब 1600 અમે દેતા છે, તમે મોકલે તો 1800 કરી દે હું એમ કહી ગયા. મેં કહા વાહ, 16 ખૂબી કા ઇમામ ચાહી ઓર એક ખૂબી પર 100 રૂપિયે કા હિસાબ લગા કરકે 1600 રૂપિયે આપ ઉસકી તનખા બતા રહે. ફિર મેં ધીરે સે ટ્રસ્ટી સાહેબ સે પૂછા કે બાવા તમારું ને તમારી ઘરવાળી નું મહિનાનું ડોક્ટર નું બિલ કેટલું આવે? તો એને કહા મોલ સાહેબ અમે બેવ માંદા ને અમારા ઘરનો ડોક્ટર તો 1500 રૂપિયા તો ડોક્ટર નું બિલ અમારું ખરું છે એમ કે કહે. તો મેને કહા આપકો માલુમ હૈ કે આપકા ડોક્ટર કા બિલ 1500 રૂપિયા હૈ ઓર મૌલવીઓ કે યહાં માશાલ્લાહ ઔલાદ કી કમી તો હોતી નહીં હૈ, તો ફિર જો હૈ આપ ઉનકો 1600-1700 રૂપિયા કે અંદર મુલાઝમત કરવાના ચાહે તો યે કૈસે હોગા? આપ જરા સોચો તો સહી. એક લતીફે કી બાત હૈ લેકિન કામ કી બાત હૈ ઓર વાકિયા હૈ. મેરે ઉસ્તાદ મોહતરમ હઝરત મૌલાના ઇબ્રાહીમ સાહેબ પટની દામત બરકાતુહુમ ને મુજે સુનાયા થા કે વો એક જગા પર કહી તશરીફ લે ગયે તો ગાંવ કે લોગો ને ફરિયાદ કી કે અમારતા ઇમામ સાહેબ ઝોહર અસર માં કહી પડે જ નહીં એમ કે ગયે. તો મૌલ સાહેબ ને પૂછા કે આપકો કેસે પતા ચલા કે વો ઝોહર અસર મે ઇમામ સાહેબ કુછ નહીં પડતે? તો કહે જિનકી રકાત જાતી હૈ ઓર લેટ મસ્જિદ મે આતે હૈ વો આગે વાલી ખિડકી સે દેખતે હૈ કે ઇમામ સાહેબ કે હોઠ નહીં હિલતે, ઇસસે હમે અંદાઝા હુઆ કે ઇમામ સાહેબ કહી નહીં પડે. તો મૌલાના જો હૈ પૂછને લગે કે આપ લોગ ઇમામ સાહેબ કો તનખા ક્યા દેતે હો? તો ઉન્હોને કહા કે મક્તબ ના 1000 આપીએ ને ઇમામત ના 700 રૂપિયા આપીએ. તો મૌલાના ને લતાફત મેં યુ ફરમાયા કે 700 રૂપિયા મેં તો વો ઉઠ બેઠ કરાતા હૈ વો ભી બહોત હૈ, અગર તુમ યે ચાહતે હૈ કે વો કુછ પઢે તો ઉસકી તનખા કો બઢાના પડેગા તો વો કુછ પઢેગા. યે હૈ એક લતાફત કી બાત હૈ લેકિન ઇસમે ઇબરત ભી હૈ કે આજકલ હમને ઉલમાએ કિરામ કી તનખાએ કમ કરકે ફિર લોગ યુ શિકાયત કરતે કે મૌલ સાહેબ દુકાન ભી ચલવે ને મૌલ સાહેબ ટ્યુશન ભી કરે ને મૌલ સાહેબ એમ કે આ ભી કરે ને પેલું ભી કરે, તો કરના હી પડેગા, ઉસકો ભી પેટ લગા હુઆ હૈ. મેરે ઉસ્તાદ મોહતરમ હઝરત મુફ્તી સઈદ સાહેબ પાલનપુરી દામત બરકાતુહુમ ફરમાયા કરતે કે વો મૌલવી કો તુમ મુજાહદે કી તાલીમ દોગે, અકાબીર ઓર અસલાફ કે વાકિયાત તુમ ઉસકો સિખાઓગે, લેકિન ઉસકે પીછે ભી ઉસકી બીવી ઓર બચ્ચે લગે હુએ હૈ, ઉનકા ઝહન થોડા ઇતના ઊંચા બના હુઆ હૈ કે વો ભી ઉસ મેયાર કે મુજાહદે કે લિયે તૈયાર હો. બહરહાલ હમારે ઉલમાએ કિરામ સે દરખાસ્ત યે હૈ કે વો તનખા કે ઉપર નજર ન કરે, લેકિન મુતવલ્લિયાન હઝરાત સે યે દરખાસ્ત હૈ કે જિસમે ઇનકી જરૂરિયાત પૂરી હો જાય કમ સે કમ ઇતની તનખા જરૂર હોની ચાહીએ. મેં આખિર મેં હઝરત કારી ઇસ્માઈલ સાહેબ કો શુક્રિયા કે અદા કરતા હું. હઝરત કારી સાહેબ કે લિસ્ટ કે અંદર તશક્કુર ઓ ઇમ્તિનાન ભી એક આઇટમ હૈ, લેકિન સહી બાત યે હૈ કે કારી ઇસ્માઈલ સાહેબ શુક્રિયા કે મુસ્તહિક હૈ કે ઇન્હોને મકાતિબ કે મુદર્રિસીન કો ઉલમા કો ઓર મુતવલ્લિયાન કો જમા કિયા ઓર માહિરીન તાલીમ કો ઓર ફિકરમંદાન તાલીમ કો જમા કરકે યે તરબિયત કા કેમ્પ રખા. ઇસ પૂરે મજમે કી અગર ઇજાઝત હો મેં તો સબ કી તરફ સે કારી સાહેબ કા શુક્રિયા અદા કરતા હું. ઓર યે ઇબ્તિદા હૈ, ઇસકો આગે બઢાના હૈ ઓર ઇસ કામ કો ખૂબ આગે ફેલાના હૈ. હઝરત કારી સાહેબ ઇસ મામલે મેં પીછે ન રહે, આઈંદા બાર બાર ઇસકે જો હૈ પ્રોગ્રામ રખે, ઇન્શાલ્લાહ બડા ફાયદા હોગા. મેં અપને ઉલમા સે એક બાત યે કહેતા હું કે ભાઈ બહોત સે હમારે મુદરિસીન ક્યા સોચતે હૈ કે 50-50 વર્ષ હમે પઢાવીએ ને આ નવું લાવા કાંથી. તો મેં એક બાત ઉનસે અર્જ કરતા હું, કભી આપકો તજરબા ન હુઆ હો કિસી ડીએસપી કી ઓફિસ મેં કિસી કલેક્ટર કી ઓફિસ મેં, હાલાંકિ વો આઈએએસ કેટેગરી કે ઓફિસર હોતે હૈ, મુલ્ક કી સિવિલ સર્વિસીસ કી આલા તરીન તાલીમાત ઉન્હોને હાસિલ કી હુઈ હોતી હૈ, લેકિન ઉસકે બાવજૂદ ભી કભી આપ ઉનકી ઓફિસ પર જાયેંગે પૂછેંગે કલેક્ટર સાહેબ કહાં હૈ ડીએસપી સાહેબ કહાં હૈ, તો આપકો જવાબ મિલેગા કે ટ્રેનિંગ મેં વો ગયે હુએ હૈ. હાલાંકિ 40-40 સાલ પુરાની ઉનકી સર્વિસીસ હોતી હૈ, અખબારાત મેં એલાનાત આતે હૈ કે કલેક્ટર સાહેબ ટ્રેનિંગ કે લિયે ગયે 15 દિન કે બાદ મિલેંગે. માલૂમ યે હુઆ કે કલેક્ટર ઓર ડીએસપી ઓર આઈએએસ કેટેગરી કે જો બડે બડે ડિગ્રી વાલે લોગ હૈ, અગરચે વો દુનિયાવી એતબાર સે ઉનકા એક મકામ હૈ, વો નઈ ચીઝ કો સીખને કે અંદર શરમ નહીં કરતે, તો યે તો અલ્લાહ કી કિતાબ હૈ, અલ્લાહ કા દીન હૈ. સહાબા ને 80-80 સાલ કી ઉમ્ર મેં 90 સાલ કી ઉમ્ર મેં કુરાન કો સીખા હૈ, તો અગર આસાન અંદાજ મેં બહોત બડા કામ હમકો સિખાયા જાતા હો તો ઉસકો સીખને મેં શરમ મહસૂસ નહીં કરની ચાહીએ, બલકે સીખ કરકે ઉસકો અપને મકાતિબ મેં જારી કરને કી જરૂરત હૈ. અલ્લાહ ઇસ ઇજ્તિમા કો કબૂલ ફરમાએ. મેં કારી સાહેબ કા ફિર સે સબ કી તરફ સે શુક્રિયા અદા કરતા હું.
શાન કો શાન કુરાન કો શાયરી શાન جزء ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 سبز دستار کو ان کے رخسار کو سبز دستار کو ان کے رخسار کو زلف قمدار کو اس نے معیار کو السلام 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 ان کے اقوار کو اعلی کردار کو ان کے اقوار کو اعلی کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو السلام 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 آمنہ